ओम शांति।
हम सभी सत बाप के, सत टीचर के और सत गुरु के, बच्चे कहो या स्टूडेंट कहो या फॉलो करने वाले सतगुरु के श्रीमत पर चलने वाले, तो नाम ही है सत गुरु, सत टीचर। तो सत का अर्थ ही है ट्रुथ, और बाबा कहते भी हैं कि अपने इस ब्रह्मण जीवन में जो बाप के समीप लाते हैं या बाप के समान बनाते हैं वो सत्यता की शक्ति है। तो सत्यता की शक्ति यही इस ब्रह्मण जीवन में, चाहे स्वउन्नति के लिए चाहे सेवा के लिए, दोनों ही बातों में सत्यता है तो सफलता है। अगर जरा भी असत्य मिक्स होता है तो सफलता में भी अंतर पड़ जाता है। और सबसे बड़े से बड़ी सत्यता या सत्य आज के मुरली में था कि आज मनुष्य कितने भी सच्चे हो लेकिन जो पहला सत्य है उसको ही भूले हुए। तो सबसे पहला सत्य है कि मैं आत्मा हूं। अगर अपने को आत्मा के बजाय शरीर समझते हैं तो ये सत्य हुआ है, वो सत्य है, झूठ हुआ ना ये। तो सबसे बड़ा सत्य जो मनुष्य भूले हुए है कि मैं कौन हूं, उस सत्य को ही नहीं जानते। और हमने इस सत्य को जान लिया, और जब इस सत्य स्मृति में रहते हैं कि मैं आत्मा हूं शरीर नहीं हूं, तो आत्मक स्थिति में जो भी हम संकल्प करेंगे, बोल बोलेंगे, कर्म करेंगे, उसमें असत्य हो ही नहीं सकता। जब बॉडी कॉन्शियस में आते हैं तो बॉडी कॉन्शियसनेस है ही असत्य, क्योंकि वो मैं नहीं हूं, बॉडी तो मेरी है, मैं नहीं हूं। तो बॉडी कॉन्शियसनेस ये स्थिति ही असत्य है। तो नेचुरल है, जब फाउंडेशन अगर कच्चा होता है तो बिल्डिंग का क्या हाल होता है। इसीलिए कैरेक्टर बिल्डिंग कहते हैं, चरित्र से जीवन की बिल्डिंग बनती है। अगर चरित्र नहीं तो कुछ भी नहीं। तो सत्यता का आधार जो है वो है सोल कॉन्शियसनेस। और जब सोल कॉन्शियसनेस होते हैं तो सोल कॉन्शियसनेस में आत्मक स्थिति में स्वयं परमपिता परमात्मा के, यानी गॉड कॉन्शियसनेस के, और कोई कॉन्शियसनेस है ही नहीं। आत्मा के लिए है ही क्या, परमात्मा के सिवा और कुछ है? क्योंकि ये अगर देखा जाए तो तीन बातें बाबा कहते हैं, एक पहले देह और दूसरा देह के समन और तीसरा देह के पदार्थ। ये तीन ही बातें गिराती है और कुछ भी नहीं हो। तीनों में से अगर एक भी हो ना, कईयों को ऐसे होता है कि देह के संबंध में ममता नहीं रहती है, मोह नहीं रहता है, न्यारे रहते हैं, लेकिन पदार्थ देह के जो पदार्थ हैं उसमें ज्यादा बुद्धि रहती, और कईयों की फिर पदार्थ में भी नहीं रहती, संबंध में भी नहीं रहती, लेकिन अपने देह में बहुत रहती, अपने स्वभाव के वश, अपने संस्कार के वश, अपने ही जो देह के प्राप्ति है उसी में ही बुद्धि का योग लगा हुआ होता है। तो जब सोल कॉन्शियस हो जाते हैं तो न है देह, और न है देह के बाद जो संबंध और पदार्थ है वो है ही नहीं। तो पहला सत्य का फाउंडेशन, सत्यता की शक्ति का फाउंडेशन हुआ सोल कॉन्शियसनेस, और आत्म अभिमानी बनने से नेचुरल है हम बाबा के याद में सहज ही रहते, याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन आत्मा के लिए और कोई है ही नहीं सिवाय परमात्मा के। ये जो भी मेरा मेरा है वो देखो देह और देह के संबंध में विस्तार है। अगर आत्मा रूप में स्थित हो जाते हैं तो सारे ही खत्म हो जाते हैं, एक ही बाबा रह जाते। तो इसीलिए सत्यता की शक्ति का पहला फाउंडेशन है सोल कॉन्शियस में, और अगर हम इस कॉन्शियस में रहते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे ऊपर दूसरे के असत्य का भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। क्यों? कि सत्यता की शक्ति, सत्यता है रोशनी और असत्य है अंधकार, तो रोशनी के आगे अंधकार नहीं रह सकता है। सत्यता की शक्ति अगर हम देखें तो दूसरे शब्दों में पवित्रता का संबंध सत्यता से, क्योंकि जहां सत्यता होगी ना तो सत्य माना ही स्वच्छ, जो सच्चा होगा वो स्वच्छ जरूर होगा। जैसे सच्चा सोना, सच्ची चीज जो होगी उसमें मिक्स नहीं होगा तो स्वच्छ होगा। जो सच्चा सोना होता है उसमें अलय नहीं होता है, और जब अलय मिक्स होता है तो कैरेट बन जाता है, 15 कैरेट, 16 कैरेट, 22 कैरेट मिक्स हो जाता है ना। तो जहां सत्यता होगी वहां स्वच्छता होगी, यानी पवित्रता होगी। तो सत्यता की शक्ति वाले पवित्रता को अपनाना, उसमें कोई उनको मेहनत नहीं लगेगी, क्योंकि सत्यता पवित्रता का बहुत कनेक्शन है। अभी हमको सत्यता इस भ्रमण जीवन में क्या चाहिए, क्योंकि कई ऐसे सरकमटेंस होते हैं जिसमें कहते हैं कि मैं तो सच्चा हूं, लेकिन आजकल असत्य के जय दिखाई देती है बाहर से, और सच्चे की हार दिखाई देती है। तो जब ऐसे सरकमस्टेंस हमारे सामने आते हैं तो अगर मैं सच बोलती हूं तो और ही मेरी हार हो जाती है, और जो झूठ बोलता है वो बहुत अच्छे शान मान में आगे बढ़ जाता है। जैसे दुनिया वाले भी कहते हैं कि जो सत परमात्मा के तरफ जाते हैं वो तो धक्के खाते रहते हैं, और जो झूठ बोलते हैं वो तो बड़े बड़े अच्छे सुख के साधनों में झूलों में झूल रहे हैं तो ये क्यों झूठ और फिर झूले में झूल रहे हैं और सच्चे जो हैं वो भटक रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उसका कारण क्या? ये कभी सीन देख करके आता है कि चलो थोड़ा मैंने भी थोड़ा सा झूठ बोल दिया ऐसे कारण से, अंदर तो नहीं लेकिन बाहर से थोड़ा सा ऐसा ऐसा करके बोल दिया तो क्या हर्ज है? लेकिन वास्तव में देखा जाए कि आजकल झूठ की विजय क्यों है, कारण क्या? क्योंकि आजकल राज जो है वो झूठ का है। सच का राज है क्या? आप देखो ऊपर से लेकर के देखो ढांचा कलयुग का, तो सच पर है या झूठ पर है? ऊपर से जो नेता कहलाते हैं उसमें सत्यता है? तो यथा राजा तथा प्रजा। आज के दुनिया में कहेंगे कि झूठ तो झूठ, सच की रति भी नहीं है, और झूठ को ही सत्य सिद्ध कर देते हैं, और जो झूठ सिद्ध करने वाले होते हैं ना वो बहुत होशियार होते हैं, और जो सच्चे होते हैं ना वो भोले भाले होते हैं। तो जो सच्चे साफ दिल वाले होते हैं ना, और वो झूठ बोलने वाले बड़े होशियार होते हैं ना, इसीलिए वो सत्य दब जाता है और झूठ उस समय बहुत अच्छे रूप में दिखाई देता है। लेकिन वास्तव में झूठ का राज होने के कारण झूठ बोलने वालों को, क्योंकि जिसका राज होगा उसको थोड़ा बहुत तो सुख मिलेगा ना, कलयुग में है ही झूठ खंड, झूठ का राज, तो सुख मिलता है उनों को। लेकिन ये सुख क्या होता है? मानो झूठ बोलने वाला अपने को उस समय मान में शान में आगे भी कर देता है, लेकिन वो थोड़े समय का होता है, सदा नहीं चल सकता है। हमारा जो सच सत्यता की शक्ति है, वो सत्यता की शक्ति से जो प्राप्ति होती है वो सदा काल की होती है, और असत्य से जो प्राप्ति होती है होती है, क्योंकि झूठ का राज है। लेकिन ये राज कितने समय तक है? जाने वाला ही है ना, कि रहने वाला है, जाने वाला है। तो जब झूठ खंड ही खत्म होने वाला है तो झूठे कहाँ जाएंगे, रहेंगे या जाएंगे? तो अल्प काल के लिए समझो वो झूले में झूल रहे हैं, झूठ वाले बहुत मौज मना रहे हैं, लेकिन वो अल्प काल के झूले में झूल रहे हैं, और सत्यता के शक्ति वाले किस में झूलते हैं? उन्हों के लिए कौन सा झूला है? अति इंद्रिय सुख का झूला। तो अति इंद्रिय सुख का झूला और ये थोड़े टाइम का झूला कितना फर्क है। और दूसरी बात, तो अति इंद्रिय सुख का झूला अच्छा या सोने चांदी का झूला अच्छा? अति इंद्रिय सुख का ना, वो अविनाशी है और वो विनाशी। और दूसरी बात आप देखेंगे कि जो असत होता है ना, झूठ होता है ना, वो बाहर से भले कितने भी होशियारी से अपने को ठीक रखे लेकिन दिल जरूर खाती है। उसके दिल में खुशी नहीं होगी, दिल में वो पाप जो है ना वो खाता रहता है। और जो सच्चा होगा उसकी दिल में खुशी होगी, बाहर से भले वो बेचारा बोला बाला होने के कारण दब भी जाए लेकिन अंदर उनके निश्चिंत तो होगा ना, क्योंकि झूठ तो पाप है ना, और सत्य जो है वो पुण्य है, वो सुकर्म है, वो विकर्म। तो विकर्म का दंड धर्मराजपुरी में मिलेगा, वो तो पीछे मिलेगा, लेकिन वर्तमान उस समय भी मिलता है, जो झूठ बोलने वाला है ना उसका उस समय तो वो जोश में होता है ना, होश नहीं होता है। उस समय वो बहुत अपने को बाहर रीति से ऐसा ही बनाएगा जैसे सचमुच है, जीवन तो इसी की है। लेकिन जब होश आ जाता है, जोश समाप्त हो जाता है और अपने समझ में आ जाता है तो फिर दिल जरूर खाती। झूठ वाला चाहे कुछ आत्माओं के आगे मान शान में आ भी जाता है, कितना अच्छा है, कितना होशियार है, हा? उसके लिए मान भी मिल जाता है, उसको शान भी मिल जाता है। लेकिन वो आत्माओं द्वारा मान शान मिल सकता है, परमात्मा द्वारा मिलेगा तो सच्चा जो होगा उसको आत्माओं द्वारा नहीं लेकिन परमात्मा द्वारा तो सदा के काल के लिए मान और शान मिलता है। परमात्मा के दिल पर उसकी पोजीशन है, आत्माओं के दिल पर चाहे उसकी पोजीशन कैसी भी हो लेकिन परमात्मा सत है। इसलिए कहते ही है गॉड इज ट्रुथ या ट्रुथ इज गॉड, परमात्मा ही सत्य है, सत्य ही परमात्मा। इसीलिए महिमा भी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदर, सत्य ही परमात्मा। तो जो सत्यता में रहता है वो किसका प्यारा होगा, सत का ना, परमात्मा का ना। तो बाह्य रीति से जब हमारे सामने कोई सरकमटेंस आता है तो उस समय थोड़ा सा लगता है कि ये झूठ की तो विजय हो गई, सच की तो हार दिखाई दे रही है। लेकिन आत्माओं के आगे भले हार दिखाई भी दे थोड़े समय के लिए, लेकिन परमात्मा के दिल पर विजय है या हार, परमात्मा के दिल के ऊपर तो जीत प्राप्त कर ली ना। और आखिर भी सहारा हमारा कौन, परमात्मा है। और जब झूठ बोलता है कोई तो एक झूठ को सिद्ध करने के लिए उनको कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। कहावत भी है कि एक झूठ को सिद्ध करने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। और जिस समय वो झूठ बोलता है उस समय उसकी बुद्धि सत परमात्मा से जुटी हुई होगी तो बुद्धि का किनारा हो जाता है सत परमात्मा के साथ, बाबा के साथ। तो जब परमात्मा सत्य यानी शिव बाबा जो सत्य है, सत बाप से उनके बुद्धि का किनारा हो जाता है, सहारा छूट गया। यहां होगा किनारा या होगा सहारा। तो झूठ बोलने वाले का परमात्मा यानी शिव बाबा के साथ किनारा हो, सहारा छूट जाता। तो जब किसका सहारा छूट जाता है तो उसकी हालत क्या होती है, हां क्या होंगी। कोई सहारा पकड़ा है आपने और वो छूट जाए तो क्या हालत होंगी, गिरेंगे ना, चोट लगेंगी ना। तो जब झूठ कोई बोलता है या झूठ का सहारा लेता है तो आप सोचो कि सत परमात्मा से जब किनारा हो गया, सहारा छूट गया तो कहां तक वो टिकेगा, फाउंडेशन खत्म हो गया ना। तो फाउंडेशन जब खत्म हो जाता है, कमजोर हो जाता है तो उसकी हालत क्या होगी, हिलेगा ना। तो सत्यता वाले को ये फख्र होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक के सामने ये परिस्थितियां आती है। झूठ बोलने वाले बातें बना करके आपको डाउन करेंगे, चलो दादी दीदी को भी जाके झूठ सुना देवे, लेकिन शिव बाबा को तो नहीं बदल सकते ना, उसको बदल सकते हैं। और शिव बाबा का सहारा अगर हमारे अंदर है तो बस वही तो सहारा काम में आने वाला है ना। कितने भी सहारे हो, शमशान तक भी मनुष्य कहते हैं कि जब अर्थी जाती है तो चार छह कंधा लगा के चिता तक तो पहुंचा देते हैं, लेकिन उसके आगे कौन जाता। चलो आप लोगों में बॉक्स बना करके खड्डे में रख देते हैं, पता नहीं क्या कुछ करते हैं, तो भी चलो बॉक्स को उठा करके खड्डे में रखा, आत्मा के साथ कौन गया। उसके साथ तो कोई चार छह लोग नहीं जाएंगे ना, वो तो यहां तक ही पूरा हुआ ना, बॉडी तक। तो आत्मा का सहारा कौन, शिव बाबा ना। और शिव बाबा सत है तो वो सहारा किसको देगा, सत्य को या झूठ को। तो अगर हमारे में सत्यता की शक्ति है तो हम आर्टिफिशियल झूठ के पंप शो को देख करके कभी भी घबराएंगे नहीं, क्योंकि झूठ का पंप शो होता है। अभी देखो झूठी ज्वेलरी जो होती है वो कितनी चमकती है, सच्ची ज्वेलरी इतनी नहीं चमकेंगी। लेकिन आजकल झूठी ज्वेलरी कितनी, झूठी चीज पैकिंग देखो आजकल झूठ की कितनी पंप शो है, चीज होंगी अंदर पता नहीं क्या, लेकिन पैकिंग इतनी शोई करते हैं। जो जो होता वास्तव में जैसी चीज है वैसी पैकिंग नहीं होती है, चीज और ही घटिया होती है और पैकिंग बहुत बढ़िया होती है। तो आज झूठ का टाइम है, राज है, तो झूठ की चमक देखो कितनी है और सत्य की चमक जो होंगी वो कम होंगी। लेकिन मूल्य किसका, मूल्यवान कौन, सच्चा या झूठा, कौन। सभी सुन रहे हैं ध्यान से या थोड़ा सा टाइम ऐसा है सुन रहे हैं सभी। तो इसीलिए हम लोगों को क्या होना चाहिए, अपने सत्यता पर अटल रहना चाहिए, ये समझना चाहिए कि ये आर्टिफिशियल पाम शो है, लेकिन मूल्य नहीं है इसका। कोई भी झूठी चीज शोई चीज होंगी। अच्छा पैकिंग ही देखो, अभी पैकिंग को आप क्या करेंगे, रख देंगे कि वेस्ट पेपर बॉक्स में डाल देंगे चीज निकाल के। आजकल तो हमने देखा फॉरेन में ज्यादा कचरा होता ही है पैकिंग का ज्यादा डस्टबिन जो बढ़ता है वो किसे, पैकिंग से तो इसीलिए हमको समझना चाहिए कि मूल्य नहीं है इसका, मूल्य अस्थाई होता है और बाहर का शो टेम्पररी। तो असत्य की जो शक्ति होती है ना वो समझो आर्टिफिशियल पाम शो, और सत्यता की शक्ति जो है वो सदाकाली, वो मूल्यवान है। क्योंकि मूल्य की चीज देखो कोई भी टाइम, सोने को आप बेचने जाओ तो फिर भी आपको मिलेगा, चांदी को बेचने जाओ कुछ मिलेगा, और आर्टिफिशियल ज्वेलरी को बेचने जाओ तो मिलेगा कुछ, कहेंगे डस्टबिन में डाल दो। तो परमात्मा के पास मूल्य किसका है, सत्य का। इसीलिए कितनी भी बातें हमारे सामने हमको असत्य के संग वाले असत्य के तरफ खींचेंगे तो सही। वो भी कहते हैं ना, अरे देखो ब्रह्मा को मारे, अभी यहां तो सारे सुख के साधन छोड़ दिए और भविष्य का सोच रहे हैं। भविष्य किसने सोच देखा है, अभी तो मौज मना लो, कहते हैं ना सभी आप लोगों को, लेकिन ये मौज है या मूंजना है। और प्रैक्टिकल में आप लोगों ने भी अपने जीवन का अनुभव किया है कि जब जूठ खंड में थे तो मौज तो मनाते थे जाकर के थोड़े टाइम के लिए, मौज तो मनाते हैं, लेकिन मौज के बाद क्या होता है? अच्छा क्लब में गए, डांस करके आए, उस समय तो मस्ती में मस्त होते हैं, कुछ नहीं सूझता है, खाना खा के आए होटलों में जाके बड़े बड़े में, पाम शो का खाना तो होता ही है, अंदर पता नहीं क्या होता है वो नहीं। एक वो सुनाते हैं तो एक आदमी की बात सुनाते हैं कि एक आदमी था तो वो एक होटल में गया, उस होटल में बहुत वैरायटी उसको खिलाई गई, होटल में बहुत वैरायटी। तो उसने कहा आपकी होटल बड़ी अच्छी है, और होटल में इतनी वैरायटी नहीं मिलती है, आपके होटल में इतनी वैरायटी तो बहुत अच्छी होटल है। तो उसने हंस के कहा कि जो सभी होटलों में जो बचता है ना वो सब तो इसलिए वैरायटी तो होगी ना। तो इसी रीति से हाल आजकल ऐसा ही है होटल तो आर्टिफिशियल जो असत्य है उसमें क्या होगा। इसीलिए वो मौज है, बाहर से लगता है मौज, लेकिन अंदर बस डांस पूरी हुई, क्लब से घर में आए तो कोई ना कोई परिस्थिति ऐसी होंगी, वो डांस वहीं रही और परिस्थिति में मूंज गए। तो अभी अभी की मौज है और अभी अभी मूंजना है। और बाबा के जब सत्यता की शक्ति आई तो क्या हुआ, अभी मूंजते है किस बात में है? मूंजते है नहीं, मौज ही मौज है। अगर कोई भी बात आए और बाबा के ऊपर दे दो, बाबा आप जानो आपका काम जाने, दिल से, ऐसे नहीं मतलब के टाइम कहो बाबा अभी आप आओ, नहीं फिर तो आएगा नहीं ऐसे भी करते हैं ना, वैसे अपने मौज में रहेंगे, जब मूंजेंगे ना उस समय बाबा को याद करेंगे, हे भगवान अभी सहारा दो नहीं ऐसे नहीं। तो ऐसे तो बाबा कहते हैं मतलब के योगी जो है ना उसको मैं सहारा नहीं देता हूं। जो दिल से प्यार से याद करता है और जो मतलब से याद करता है तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत तो दे देता हूं क्योंकि बाप है, लेकिन सदा नहीं देगा। तो कई ऐसे कहते हैं कि मैं जब भी कोई परिस्थिति आती है बाबा के कमरे में जाती हूँ, बाबा के आगे बहुत बातें करती हूँ, रूहरियान करती हूँ, बाबा ऐसा हो गया ऐसा हो गया, बाबा मेरा सुनता ही नहीं, पता नहीं मेरे को जवाब देता ही नहीं है। और कहते हैं मेरे को जवाब दिया, बात की, मेरे से बाबा बात ही नहीं करता। क्यों नहीं बात करता, बाबा तो सबके लिए है ना, किसको जवाब देता है, किसको मदद देता है, किसको नहीं देता है, तो बाबा थोड़ी पास खातरी करने वाला है। बाबा के कोई सी किलो दे, कोई एक किलो दे तो नहीं है ना, बाबा के तो सभी सी किलो दे। लेकिन क्यों नहीं बाबा का जवाब मिलता, क्यों नहीं बाबा का समय पर सहारा मिलता, उसका कारण क्या होता है? क्योंकि अगर बीच में थोड़ा भी स्वार्थ होता है ना, स्वार्थ से बाबा को याद किया, मदद चाहिए, और मदद चाहिए स्वार्थ के रीति से बाबा को सहारा मांगा तो बाबा नहीं देगा। वह सच्ची दिल से नहीं मतलब से याद किया, जब मतलब पड़ा तो बाबा को याद किया, बाकी तो अपने मजे में चल रहे हैं। और बाबा का है मुझे सदा याद करो, और हम मतलब से कभी कभी याद करेंगे तो बाबा क्यों सुनेगा, क्यों सहारा देगा? फिर बाबा भी मजा चखाता है,
बाबा कहते हैं चलो अभी अपने आप चल के देख लिया ना, अभी भी देख लो, अभी क्यों मैं मदद करूं। उस समय जब मजे में थे तो उस समय अपने मजे में रहे, अभी जब मूंजते हो तो कहते हो मैं मदद करूं, क्यों अभी भी करके देखो, कर सकती हो। तो बाबा इसी के कारण जवाब भी नहीं देते, जो बात करते हैं उसका उत्तर भी नहीं मिलता, या समय पर सहारा नहीं। अगर हम सदा ही बाबा के साथ रहें और सदा ही बाबा को जो भी कुछ मूंजते, तब है जब बुद्धि में कोई बोझ आता है, नहीं तो नहीं मूंजते। मूंजने की बात हमारे बुद्धि को क्या करती है, भारी कर देती है ना। और जब बुद्धि भारी होती है ना, तब कहते हैं बाबा अभी तो बहुत थक गए, बहुत भारी हो। तो बाबा कहते हैं अभी उठाओ बोझ, अभी भी उठाओ ना, क्यों पहले उठाया और अभी जब थक गई तो कहती हो बाबा है, पहले उठाया क्यों? क्योंकि बाबा ने तो मना की है, बोझ रखो ही नहीं ना। बाबा ने खुद ऑफर किया है कि मैं तुम्हारे सारे बोझ उठाने के लिए आया हूं। फिर भी हम अगर अपने ऊपर बोझ रख देते हैं तो बाबा क्या करें, कहते चलो। कोई बच्चा जिद करता है, नहीं नहीं मैं ये करूंगा, क्या करती है माँ, कहती है करके देखो, खुद ही गिरेगा, देख लेना, चोट खा लेगा, सीख जाएगा, करते हैं ना ऐसे। तो बाबा भी थोड़ा मजा चखाता है, फिर देखता रहता है साखी होके। लेकिन अगर हम जैसे बाबा कहते हैं वैसे चले, तो कभी भी हम मौज में नहीं रहे, ये हो ही नहीं सकता। क्यों? कि बाबा ने हमारी सारी जिम्मेवारी ले ली, मन भी कह दिया मेरा है, तन भी मेरा बाबा का हो गया, और धन भी बाबा का हो गया। जब तन मन धन सब बाबा का हो गया, तो बाबा जिम्मेवार है या हम जिम्मेवार? बाबा जिम्मेवार है ना। लेकिन कहां कहां हम देते हैं, कहने में आता है कि हमने मन दे दिया, लेकिन बना के मेरा रखा है अपना। कल भी वहां दादी ने भी क्वेश्चन सुनाया ना, तो मन क्यों मूंजता है, मन क्यों बीमार होता है? कहने में आता है कि मैंने सब कुछ दे दिया, लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं होता है। इसीलिए देखो कभी भी कोई अवस्था नीचे ऊपर होती है ना, तो आप देखो भाषा क्या निकलती है, कहती है दादी आज हमारा मन जो है ना, मेरा मन कहेंगे, हमारा मन, मेरा मन जो है ना वो बहुत उदास है, नहीं कहेंगे बाबा का मन, मेरा मन, मेरा मन, आज मेरी अवस्था ठीक नहीं है, आज मेरी खुशी गुम हो गई है, अरे मेरा मेरा आया कहां से, मेरापन आता है ना तो मौज होती। अगर बाबा के हवाले हमने कर दिया तो बाबा जिम्मेवार नहीं हो, ये हो ही नहीं सकता। कभी भी देखो होपलेस केस तो आखिर कहां जाते हैं। कोई भी होपलेस केस होगा, कितना भी होशियार कोई अपने वर्ग में हो, लेकिन जब होपलेस केस होता है तो सब अपने को छोड़ देते हैं, कहते है, हमारे से नहीं हो सकता, इतने ही हमारे से होगा, अभी परमात्मा को याद करो। तो होपलेस केस में होप देने वाला आखिरीन कौन? बाबा। अगर बाबा के हवाले हमने सचमुच कर लिया तो कभी भी हम मौज में नहीं रहे, मूंझे, ये हो ही नहीं सकता। हो सकता है? तो सत्यता की शक्ति यानी शिव बाबा की शक्ति, सत्यता की शक्ति है ही गॉड इज ट्रुथ। इसीलिए बाबा कहते हैं सिर्फ टीचर नहीं कहो, हम लिखते हैं ना तो सिर्फ टीचर तो कॉमन है ना, लेकिन ये सत्य टीचर है, सत शिक्षक, सत गुरु है, गुरु बहुत है, सत गुरु एक ही। तो इसीलिए सत्यता की शक्ति बहुत बड़ी, असत्य उसको हिला नहीं सकता, लेकिन थोड़े टाइम के लिए असत्य वाला पंप शो में आता जरूर, उसको देख करके हमको घबराना नहीं चाहिए। क्या करें, समय ऐसा था ना, बात ही ऐसी थी ना, इसलिए मैंने भी हाँ कर ली थोड़ी, मैं भी मिक्स हो गई थोड़ी, मिल गई उसे। आखिर कहां तक सत्य सहन करूं, ऐसे आते हैं भाव सामने, लेकिन हमको ये स्मृति में रखना चाहिए कि ये अल्प काल का है और सत्यता की शक्ति जो है वो सदा काल की। तो जो सदा काल की शक्ति है वो भरी या अल्प काल की शक्ति भरी, सदा काल की चाहिए ना। और कभी भी कोई चाहता है चलो थोड़े टाइम के लिए मेरा मान शान हो जाए, नाम हो जाए, फिर भले दूसरे का होवे, कोई चाहेगा? जिसका एक बारी नाम हो गया वो कहेगा मेरे नाम में कोई कमी नहीं आ। किसी ने थोड़ा सुख का अनुभव साधन का कर लिया, वो छोड़ने के लिए तैयार कभी नहीं होगा, समझेगा सदा ही। किसी से भी पूछो सदा काल का सुख चाहिए या थोड़े टाइम का, कोई कहेगा थोड़े टाइम का चाहिए, सदा का ही चाहते है ना। तो अविनाशी शक्ति सत्यता की है, असत्यता की शक्ति विनाशी। विनाशी चीज के पीछे दौड़ने वाला जो है वो थोड़े टाइम के लिए तो वो खुश होगा, लेकिन मन से नहीं, बाहर से हो सकता है, मन से अंदर से नहीं। तो हमको तो अंदर का चाहिए ना। और सत्यता की शक्ति में पवित्रता पहली बात, जो सच्चा होगा ना वो अपने मुख से एक बोल भी ऐसे मिक्स बोलेगा ना उसका मन खाएगा, चाहे वो ऐसा बुरा शब्द नहीं भी बोले लेकिन व्यर्थ बोल लिया जो जरूरी नहीं है, उसके बजाय थोड़ा और अच्छा हो सकता है, तो उसका मन जरूर खाएगा कि ऐसे न बोलती ना मैं, ऐसे बोलती तो अच्छा। और झूठ वाले को तो कोई पता ही नहीं, वो तो बेचारा है ही बेहोश, तो उसको तो पता नहीं पड़ेगा, उसका मन नहीं खाएगा, लेकिन सत्यता की शक्ति वाले का मन खाता है। झूठ वाले का खाएगा लेकिन उस समय नहीं, उस समय वो झूठ के वश है ना, उस समय तो वो बड़ा अपने को अवमान में समझेगा, बस मेरी जीत हो रही है। लेकिन आखिर भी आत्मा का ओरिजिनल रूप जो है वो तो सत्चित आनंद स्वरूप कहते हैं, सत बाप के बच्ची है ना आत्मा, फिर भी बच्चे है ना, इसीलिए वो कुछ टाइम के बाद उसके मन खाता है, उस समय नहीं खाता। तो इसीलिए कभी भी असत्यता के प्रभाव में नहीं आता। इसीलिए बाबा के मुरली में आता है, सिंधी में कहते हैं, बाबा कहते थे, सुना रहे थे कि बाबा के मुरली में आता है, सिंधी भाषा में बाबा सुनाते थे, तो सच तो बीठो नच, अर्थात जो सत्य वाला होता है वो सदा खुशी में नाचता रहता, क्योंकि सच्चे की मन नहीं खाएगा ना, मन खाता है माना बोझ मन में फील होगा, तो भारी चीज कभी भी भारी होगा तो नाचेगा नहीं, हल्का जो होगा वो नाचेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते थे जो सच्चा होगा ना वो सदा दिल में नाचता रहेगा। अगर हमको सत्य की शक्ति की पता है, महत्व का पता है, तो अगर सत्यता की शक्ति का महत्व नहीं है झूठ को देख करके मैं भी ऐसे घबरा रही हूँ कि मैं भी झूठी बन जाऊं तो शायद मुझे भी कुछ मौज मिल जाए, तो नहीं। तो सच्ची दिल वाले को ये वरदान है, सत्यता वाले को ये वरदान है कि सदा साहेब यानी शिव बाबा उसके ऊपर राजी रहे। और जब शिव बाबा राजी है तो दूसरे क्या करेंगे हम, पहले तो वो राजी होना चाहिए ना। तो सच्ची दिल जो भी कदम उठाए, संकल्प भी सत्य हो, व्यर्थ भी सत्यता नहीं। अगर व्यर्थ आता है तो समझो मिक्स है, और अगर बुरा बहुत होता है तो समझो बिल्कुल ही झूठ है। तो मिक्स भी नहीं चाहिए। बाबा के आगे अंदर एक समझो, अंदर हमारा कुछ नहीं हो, बाहर से हम अपना शो करें तो अंदर एक बाहर दूसरा, बाहर अपने को ऐसा सिद्ध करें हम जैसे बहुत योगी है और अंदर हमारा योग हो ही नहीं। तो इसको कहा जाता है अंदर एक बाहर दूसरा। तो ये भी हमारा नहीं होना चाहिए। जो मैं हूं जैसी हूं वो शिव बाबा के आगे वैसे ही सत्य अपने को सिद्ध कर। या बाहर ब्राह्मण परिवार में भी जो हूं जैसी हूं वैसे ही चलूं वो ठीक है। अगर अंदर एक बाहर दूसरा होता है तो उसको भी सत्यता नहीं कहा, उसको भी असत्यता कहा जाए। और उसमें सत्यता की शक्ति कभी नहीं आ सकती, क्योंकि अंदर असत्य भरा पड़ा है, झूठ है ना। अंदर एक बाहर दूसरा तो अंदर क्या होगा, झूठ, बाहर से सत्य। तो इसीलिए बाबा कहते हैं सच्ची दिल पर साहेब राजी। अगर हम अपने धन का पोता मिल देते हैं, क्यों कि तन मन धन सब बाबा का मैंने कह दिया, दे दिया बाबा को, अभी बाबा ने हमको वापस दिया है, बाबा के तरफ से हम कार्य में लगा रहे। तो जिसके तरफ से कोई चीज यूज की जाती है तो उसी के प्रमाणी की जाती है। जैसे ट्रस्टी लोग हैं, तो ट्रस्टी लोग जो मालिक कह के गया, जिस विधि से उसको यूज करना है, जो कह के जाता है उसी अनुसार ही ट्रस्टी चलेंगे ना। अगर ऐसे नहीं चलते तो वो कहते हैं ये ट्रस्टी ट्रस्टी नहीं, ये अमानत में खयानत करने वाला है। तो इसी रीति से बाबा को जब हमने अपना तन मन धन दे दिया तो अभी बाबा ने सेवा के लिए हमको ये दिया। बाबा ने ऐसे नहीं दिया है तो तुम अलग काल के साधनों में मस्त हो करना मन को, नहीं। बाबा ने विश्व के सेवा के प्रत ये तन मन धन दिया। अगर मानो आप अपनी कमाई कमा रहे हो, कोई यज्ञ से भंडारी से नहीं लेते हो लेकिन अपने पे लेते हो, काम करते हो और पे लेते हो, लेकिन आप ये लौकिक जाब भी किसके डायरेक्शन से कर रही, अपने मन से कि बाबा के श्रीमत अनुसार कर रहे, कैसे करते हो, श्रीमत के आधार से या मन मत से, श्रीमत से ना। तो जब उनके डायरेक्शन से आप काम कर रहे हो तो वो धन किसका हो गया, जिसके डायरेक्शन से कर रहे हो उसके डायरेक्शन से ही धन को भी यूज कर सकते। समझो खाना खाते हो आप तो कहेंगे मैं तो बाजार से खुद खरीद करके लाती हूँ, कोई सेंटर का थोड़े खाती हूँ, कोई भंडारी से पैसा निकले और उससे खरीद थोड़ी करती हूँ, अपनी मेहनत से बनाती हूँ, अपने कमाई के पैसे से बनाती हूँ। लेकिन वो अन्न आया किसे, उसी पैसे से आया ना, और वो पैसे का डायरेक्शन कमाने का आपको बाबा ने दिया, तो वो भी तो बाबा का ही हो गया ना। तो कभी भी ये नहीं कह रहे तो भाई हम कोई अपने कमाई का खाते हैं, हम ब्रह्मा भोजन ही खाते, चाहे अपने घर में बनाते हो, चाहे सेंटर पर खाते हो, चाहे मधुबन में खाते हो, लेकिन अपने घर में भी ब्रह्मा भोजन खाते हो। बाप दादा के डायरेक्शन पर चलते हो तो ब्रह्मा बाबा ने आपको डायरेक्शन दिया तो ब्रह्मा भोजन हो गया ना। तो हम खाते यही हमारी देखो लक है हमारा, जो हम खाना नहीं खाते हम प्रसादी खाते हैं, और प्रसाद का कितना महत्व होता है। तो हम लोग शिव बाबा का दिया हुआ खाते हैं, क्योंकि शिव बाबा के डायरेक्शन से कमाया, और उस कमाई से जो भी कोई चीज यूज करते हैं तो उसमें वो भर गया ना। प्रसाद भी कैसे बनता है, मूर्ति के आगे रखते हैं, बनाने वाले तो खुद ही होते हैं ना, लेकिन मूर्ति को स्वीकार कराते हैं, और मूर्ति के आगे स्वीकार हो जाता है वो प्रसाद हो जाता है, और क्या होता है। हलवा तो वही होता है ना, बनाने वाले भी वही होते हैं, लेकिन वो हलवा प्रसाद क्यों हो गया, क्यों कि देवता के आगे या परमात्मा के आगे स्वीकार करा दिया, उसको अर्पण कर दिया तो वो प्रसाद हो गया। और हम लोगों का तो नियम ही है, जब भी खाना बनाते हैं तो पहले क्या करते हैं, पहले भोग लगाते हैं ना बाबा को, कि नहीं जल्दी जल्दी में खा लेते हैं। नहीं, अगर जल्दी भी हो, कहीं ऐसे माताएं कहती है कि बच्चों को संजो स्कूल में जाना है, अभी उनका टाइम हो गया और सब्जी जो है वो उसी समय ही तैयार हो सकती है, उसको 5 मिनट भी लेट नहीं कर सकती है मानो, तो भी हमको बाबा के भोग का निकाल करके, चलो भोग लगाने का टाइम आपको नहीं मिले, लेकिन पहले बाबा का हिस्सा अलग निकाल के फिर बच्चे को भले दो, पहले बाबा का जरूर हिस्सा ले, उसमें तो टाइम नहीं लगता है ना, एक करछी से बाबा का निकालो, दूसरी करछी बच्चे को दे दो, उसमें तो टाइम नहीं लगेगा ना। या कई बार ऐसे होता है बहुत देरी होती है, लेकिन फिर भी अगर थाली में भी और कुछ नहीं तो थाली में भी विधि प्रमाण आप भोग लगा के खाते हो तो भी बाबा को ऑफर किया तो प्रसाद हो। वैसे होता नहीं है ऐसे, कभी कभी की बात कोई इमरजेंसी हो, लेकिन हम खाते ही प्रसाद है, क्योंकि जो भी हम खाते हैं वो पहले एक तो शिव बाबा का दिया हुआ ही है, और दूसरा फिर पहले जिसने दिया उसको जरूर स्वीकार कराया जाता है। ये सने होता है, कोई कोई चीज देता है तो हम समझते हैं इसको भी रिटर्न दें, ऐसे ही नहीं लेके रख दें, होता है ना ये, तो देने वाले दाता को स्वीकार तो कराना चाहिए ना। तो हम तो बड़े लकी है जो हम खाते ही प्रसाद, खाते ही ब्रह्मा भोजन, और अन्न का मन पर प्रभाव तो पड़ता ही है ना, और हमारा मन तो वैसे ही बाबा को दे दिया और बाबा का दिया हुआ यूज कर रही हूँ, ये स्मृति अगर हमको है बहुत अवस्था अच्छी रहेगी, कभी मन नीचे ऊपर नहीं होगा, उड़ेगा जरूर, आगे उड़ेगा तेज रफ्तार से, नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये मेरापन जो है ना वो ही मन को मैला करता है, मेरा मन, मेरा, मेरा नाम नहीं, मेरा शान नहीं, मेरे को कोई पूछता नहीं, इतनी सेवा करते, इतना इतना कुछ करते फिर भी कोई देखता ही नहीं, पूछता ही नहीं, पानी भी नहीं पिलाता कुछ, ये मेरापन आ जाता है ना तो मैला कर देता है। एक बारी बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई, कोई भाई ने आके बाबा को कहा, बाबा मेरे को पानी भी नहीं पूछते, इतनी सेवा करके आता हूँ, चलो बाहर वाला भी कोई आवे उससे भी पानी पूछा जाता है, मेरे को हमारी ब्राह्मणी पानी भी नहीं पूछती। तो बाबा ने कहा मैं पूछ लेता हूँ ना तुमको, अरे भगवान ने तुमको पूछ लिया, ब्राह्मणी ने नहीं पूछा तो क्या बड़ी बात है, भगवान ने तो तुमको पूछ लिया। जो भगवान के दिल पर है वो सबके दिल पर आपे ही होंगे, आज नहीं तो कल। सत्यता की विजय है ये। थोड़ा सा सत्यता वाले को सहन जरूर करना पड़ता है, क्योंकि झूठ का राज अभी कांग्रेस का राज है, तो चाहे कितने भी अच्छी बातें दूसरी पार्टी करेंगी, लेकिन मानना किसको पड़ेगा? कांग्रेस को ही मानना पड़ेगा, राज है ना उनका, तो झूठ का राज है। इसलिए थोड़ा सा सत्य वाले को सहन जरूर करना पड़ेगा, लेकिन वो सहन मजबूरी से नहीं करना। कई ऐसे है सहन भी करेंगे, कहेंगे क्या करें, करना ही पड़ता है, मरना ही पड़ता है। अरे मरन मजबूर होके क्यों मरती हो, खुशी से मरो। अगर मरना ही है तो खुशी खुशी से मरो, मजबूर होके क्यों मरते हो। तो सहन भी अगर करते हो तो खुशी से करो। अच्छा, सहन करने में ये जरूर है कि कुछ सुनना भी पड़ता है। झूठ वाला थोड़ा सा ऊंचा भी दिखाई देता है, सत्य वाला थोड़ा नीचे दबा हुआ दिखाई देता है। सहन करने वाले का उस समय तो हार लगती है, लेकिन है वास्तव में जीत, हार में भी जीत है। क्यों? कि उसने सहन शक्ति से और बातों को तो खत्म कर दिया, विजय तो प्राप्त कर ली ना। तो मम्मा ने एक बारी बहुत अच्छी बात सुनाई थी, तो मम्मा के आगे ऐसे ही जाके किसने कहा, तो मम्मा मजबूरी नहीं कहा, कहा मम्मा क्या करें, बहुत सहन करना पड़ता है, जब से मैं आई हूं तो ये सभी का सहन मैं ही करूं, मुझे ही सहन करना है, और भी तो कुछ करे ना, मैं ही बस वो नहीं इंडिया में कहते हैं मैं ही बलि का बकरा बनूं क्या, दूसरे भी तो बने। तो मम्मा के आगे कहा, तो मम्मा ने कहा सहन भी किया, और सहन करने के बाद तुम ऐसे सहन का बात कर रही हो जैसे पता नहीं कोई दवाई खा के आई हो। अरे सहन से शक्ति बढ़ती है, अगर सहन किया तो तुमने उस आत्मा के कारण सहन किया या शिव बाबा के कारण सहन किया? सामने तो दिखाई ऐसे देता है ना, इसके कारण चलो मैं, मेरे को कहती है तो मैं ही सहन कर लेती हूँ, देखने में वो व्यक्ति आती है, लेकिन हम व्यक्ति के कारण सहन नहीं कर रहे, हम सहन कर रहे हैं शिव बाबा की श्रीमत है, आज्ञा है कि तुम सहनशील बनो। उस व्यक्ति के कारण या परिस्थिति के कारण मैं सहन नहीं कर रही, किसके कारण करते हैं सहन? शिव बाबा की आज्ञा है ना, तो परमात्मा के आज्ञा को मजबूर होकर के करना है क्या? खुशी होनी चाहिए ना, अगर कोई परमात्मा के आज्ञा को पालन करता है तो आज्ञा पालन करने की खुशी होनी चाहिए या मजबूरी होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? खुशी होनी चाहिए ना। तो सहन करो लेकिन मजबूरी से करो, वो सहनशीलता नहीं है, वो तो ऐसे ही हुआ जैसे एक मण दूध हुआ था लेकिन एक बूंद विष की मिला ली तो वो विष हो गया। इसीलिए मजबूरी से सहन नहीं करो, उसका कुछ नहीं बनेगा, सहन भी करेंगे और बनेगा कुछ भी नहीं। लेकिन हम सहन कर रहे हैं बाबा की आज्ञा के कारण सहन कर रहे हैं। तो आज्ञाकारी बनने की, आज्ञाकारी को कितनी दुआएं मिलती है मन ही मन में। अगर कोई माँ बाप की रवाजी माँ बाप की भी आज्ञा मानता है तो आज्ञाकारी के ऊपर कितनी दुआएं होती है माँ बाप की, बड़ों की। तो मैंने बाबा की आज्ञा मानी है तो बाबा की दुआएं मेरे साथ है, इसलिए मजबूर होके सहन नहीं कर, आज्ञाकारी के रूप से सहन बले कर, फिर आपको ये लगेगा नहीं 10 बारी मैंने सहन किया है, 10 बारी मैंने किया तो एक बारी तो वो भी करे ना, फिर ये दिखाई देगा। अगर मजबूरी से किया ना तो 10 वारी तो मजबूरी से कर लेंगी, 11वां वारी वो जैसे गैस में गुब्बारा बढ़ जाता है ना तो फटेगा जरूर, वो फिर नहीं टिकेगा, अगर फटेगा तो पूरा ही फटेगा। इसीलिए मजबूरी से सहन नहीं करो, प्यार से बाबा की आज्ञा, आज्ञाकारी को जो अंदर ही अंदर दुआएं मिलती है ना वो कम नहीं होती है। हमने देखा है अगर बाबा ने आज्ञा की, कोई छोटी से हम लोग तो बाबा के साथ रहे हैं ना, तो बाबा ने कोई छोटा सा स्थूल काम भी कहा, मेरा काम नहीं, ड्यूटी नहीं है, लेकिन बाबा ने मेरे को हुज्जत रख करके स्नेह से कोई स्थूल काम भी कहा और मैंने वो किया, बाबा की आज्ञा को पालन किया, तो उसी समय ही मन में खुशी होती है। और हमने देखा उसका रिटर्न बाबा से बहुत बहुत दुआएं मिली। चाहे आप स्थूल काम भी आज्ञाकारी बन करके करके देखो, बड़ों की आज्ञा है और बड़ों की आज्ञा को खुशी खुशी से आप करके देखो, उसी समय आपको प्रत्यक्ष फल मिलेगा। अंदर की जो दिल की खुशी होती है ना, वो जैसे एक खुशी की खान खुल जाती है ना, जैसे थोड़े टाइम की नहीं होती है, लेकिन अंदर की वो खान जैसे कोई निकलती रहेंगी खान से, ऐसी खुशी दुआएं के रूप में मिलती है। लेकिन उसको मिलेंगी जो मजबूर होके नहीं, आज्ञाकारी बन के करो, वो उसको सहन कर रही हूं ये लगेगा ही नहीं, वो तो कहेंगे अरे जीत प्राप्त हो गई, बाबा की आज्ञा है सहनशील बनो और मैंने बन के दिखाया, वाह विजयी बन गई, तो विजयी की खुशी होगी ना उसको, मजबूरी थोड़ी होगी। लेकिन मेजोरिटी देखा जाता है सहन भी करेंगे लेकिन मजबूरी से, उसका बनता कुछ नहीं। लेकिन अगर खुशी खुशी से करो तो बहुत दुआएं मिलती है। और आजकल तो हमने देखा है अगर खुद खुश रहो और दूसरे को खुशी दो, चलो मुझे कुछ सहन भी करना पड़ा लेकिन मैंने दूसरे को खुशी दी, तो उसकी खुशी की दुआएं अपने पास जरूर पहुंची। ये एक सूक्ष्म नियम है, दूसरे को खुशी देना माना अपने खुशी को बढ़ाना। खुशी को बढ़ाने की बाबा ने एक बारी क्वेश्चन पूछा था कि खुशी को बढ़ाने की विधि क्या है, तो बाबा ने कहा बांटना अर्थात बढ़ाना। जितना बांटेंगे उतनी बढ़ेंगे, जितना संभाल के रखेंगे ना मेरे पास ही रहे दूसरे को क्या दूं, उतनी कम होती जाएंगी। यूज करना, ये यूज करने की चीज है, यूज करते जाओ बढ़ते जाएंगे। कोई स्थूल चीज तो नहीं है ये जो दे दिया तो 8 से 7 हो जाएंगे, नहीं ये बढ़ती जाएंगी। तो समझा क्या करना है, हा? सत्यता की शक्ति से कभी नहीं नीचे आना, बिल्कुल अटल अखंड खंडित नहीं हो। फिर देखो ब्रह्मा बाबा को देखा ना, सत्यता की शक्ति ने हम लोगों को जन्म दिया ना, नहीं तो बाबा के पास तो सारे सन्यासी वगैरह सब आए, कहा आप सर्वव्यापी करके नहीं कहो ना इसमें क्या है, जैसे दुनिया में चल रहा है आपके इतने फॉलोअर्स हो जाएंगे, आप सिर्फ सर्वव्यापी नहीं कहो, आप सिर्फ पवित्रता का नियम ऐसा पक्का नहीं करो, कहो थोड़ा टाइम मुकरर कर दो। इतने लोग बाबा के पास आए, बाबा ने कहा मैं सत्यता को नहीं छोड़ सकता, तो आज सत्यता की शक्ति ने क्या कमाल करके दिखाई, हम लोग किस शक्ति से आए, हाँ ब्रह्मा बाबा के सत्यता की शक्ति से ही तो हम खड़े हुए ना। तो जब ब्रह्मा बाबा इतना अटल रहा, कई बाबा के पास आए, बस थोड़ा इसको हल्का करो ना हम सारी जायदाद आपके यज्ञ में लगा देंगे, बाबा ने कहा ऐसा धन यज्ञ में लगना ही नहीं। दाल रोटी खाएंगे लेकिन आपका पैसा ऐसा यूज नहीं करेंगे। सत्यता की शक्ति है ना ये, हिला क्या बाबा, चलो पता नहीं आगे कुछ नहीं होवे, चलो थोड़ा ढीला कर देता हूँ पवित्रता के नियम को, सर्वव्यापी के चेंज ज्ञान को हिला। तो ये सत्यता की शक्ति है ना, और सत्यता की शक्ति ने आखिर महामंडलेश्वरों को भी हिला तो दिया है, हैं? अभी भी दादी को, अभी दादी लास्ट में हरिद्वार में महामंडलेश्वरों ने निमंत्रण दिया। पहले महामंडलेश्वर इंडिया के इतना नारी जाति से घृणा करते थे, अगर भाषण का भी मिलेगा ना चांस का, कोई सन्यासी साथ में होगा कहेंगे ये हमारे गद्दी पर बैठ के भाषण नहीं कर सकते, नारी जाति हमारे गद्दी पर नहीं बैठ सकती, दूसरी कोई संदली बंदली देंगे बैठने की भाषण की, उनके गद्दी पर कहते थे ये नहीं है। और अभी तो पांव पड़ते हैं, देखो ये सत्यता की शक्ति, कभी भी सत्यता की शक्ति से हिलना नहीं, ठीक है ना। आज